वसुदेवसुतं देवं कंसचरणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय
सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत निर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य सदात्मानं सृजाम्यहम्
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनां
विनाशाय
जन्म कर्म च मे दिव्या मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता
भवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता
चरणमर्दनं
वसुदेवसुतं देवं
कंसचरणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं
कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीराम जय राम
जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम
बात चल रही थी कि प्रेम के तत्व का रहस्य क्या है। सेठ जी ने सार बात बताया कि भगवान का स्मरण करने से भगवान में प्रेम होता है और भगवान का स्मरण भगवान में श्रद्धा विश्वास रखने से होता है। जिसमें हमारी श्रद्धा होती है उसकी याद आती है और जिसकी याद आती है उसमें प्रेम होता है। ये खास जुड़ी हुई बात बताई और ये बताया कि भगवान की भी भगवान से भी कोई इच्छा न रखे, कोई इच्छा न रख करके प्रेम किया जाए। उसके लिए उदाहरण दिया था कि एक अंग्रेज था, उसके पास सेठ मिलने के लिए गए रुई के, रुई देने उसे। उसने कहा मुझे रुई लेनी नहीं है। तो सेठ ने सारी रुई खरीद ली। अब उसकी मील बंद होने लगी तो कहा कि अब रुई हमको दो कि हमको देनी नहीं है। अंत में वो अंग्रेज जो है वो कहने लगा बाबा मील ले लो तुम्हारी, हम मील दे देते हैं। तो सेठ ने उसको रुई दे दी। ऐसे ही भगवान है वो तो है अंग्रेज की जगह और जीवात्मा है ये सेठ की जगह। भगवान से भी यदि कोई न कोई कामना रखते हैं तो उससे भगवान विशेष प्रसन्न नहीं होते हैं। और जब हम प्रेम का व्यापार अपने यहां स्टॉक कर लेंगे रुई के समान, रुई है प्रेम, तो उससे भगवान वश में हो जाते हैं। ये खास बताई थी बात। उस प्रसंग में भगवान की महिमा में आगे बता रहे थे कि भगवान का भजन ध्यान श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। जितना नाम लेओ उतना अपने अंदर ऐसा आना कि आहा मेरे द्वारा भगवान ने खूब अच्छा नाम का उच्चारण करवा दिया। थोड़ी देर भी ध्यान लगे तो उसमें खूब खुशी मनाओ कि बड़ा अच्छा हुआ। ऐसी भगवान में यदि हमारी श्रद्धा हो जाएगी तो भगवान को आना ही पड़ेगा। जैसे सूरदास जी ने कहा कि बाएं छुड़ाए जात हो निबल जान के मोय, हृदय से जब जाओगे तब पुरुष बदूंगा तोय। हाथ छुड़ाकर मुझको कमजोर समझ करके आप जा रहे हो, किंतु मेरे हृदय से निकलोगे तो मैं आपको पुरुष समझूंगा। भगवान सूरदास जी के पास वापिस आ गए। सूरदास जी को भगवान ने बिना मांगे ही नेत्र दे दिए कि लो, अपने दर्शन भी दे दिए, खुश हो गए। भगवान बोले सूरदास मैं तुम्हारे पर खुश हो गया। सूरदास बोले, प्रभु आप खुश हो गए, आप मिल गए, अब मेरे क्या बाकी रहा। भगवान भी बड़े खुश और कर मस्त भी मस्ती में आकर, अब तू मेरे से कोई वरदान मांग। सूरदास जी कहने लगे, महाराज मैं तो यही वरदान चाहता हूं कि मैं पहले जैसा वापिस सूरदास ही बन जाऊं, क्योंकि सूरदास की अवस्था में आपका दर्शन हुआ और अब आप मिल गए। सूरदास अवस्था में मैंने और तो कुछ देखा नहीं, केवल आपका ही ध्यान किया, और कोई चीज दिखती नहीं थी। अब आपने यदि मुझे नेत्र दे दिए और आपके अलावा इन नेत्रों से मैं को कुछ और देखने लगूंगा तो ये नेत्र दिए हुए मेरे लिए बाधक बन जाएंगे, इसलिए ये आंखें तो आप वापिस ले लो। और मन से आप जैसे ध्यान में आते थे वैसे ही आप ध्यान में आते रहो। भगवान के पास में बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रहा। भगवान ने कहा, सूरदास जी कुछ तो मांगो। कि महाराज कुछ इच्छा ही नहीं, मैं क्या मांगू। कि तुम्हारी कुछ भी इच्छा नहीं है, कि पैदा ही नहीं होती इच्छा, कुछ इच्छा ही पैदा नहीं होती। तो फिर भगवान तथास्तु तो बोल दिए, लेकिन भगवान के मन में ही रह गई कुछ मांगता कुछ मांगता कुछ मांगता। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि भगवान से बढ़कर के भगवान का भजन ध्यान है। हम लोग क्या करते हैं कि भगवान का थोड़ा सा भजन करते हैं और बार बार सोचते हैं भगवान मिले तो नहीं, भगवान मिले तो नहीं। अरे भगवान मिल जाएंगे तब क्या आप भजन साधन छोड़ दोगे? कि नहीं, भजन तो नहीं छोड़ेंगे। तो जब मिल जाएंगे तब भी भजन करना है, नहीं मिले हैं तब भी भजन करना है, तो फिर भजन में ही लगो। भगवान मिले न मिले परवाह ही मत करो, क्योंकि मिल जाने से भजन ध्यान कोई हमारा घटाना तो है नहीं। और एक और रहस्य की बात है, यदि हमारा भजन ध्यान सकाम भाव से रहेगा तो हमको भगवान की खुशामुदी करनी पड़ेगी, और यदि भजन ध्यान हमारी श्रद्धा और विश्वास के साथ होगा और भगवान में प्रेम निष्काम होगा तो फिर गरज रहेगी भगवान को, और हम हमारे कोई गरज न रखेंगे, मस्त रहेंगे। हमको क्या गरज, हमको भगवान की भी गरज नहीं। ऐसे भगवान के मन में अपनी आवश्यकता पैदा करो। हमारे लिए भगवान की आवश्यकता, हमारे भगवान की आवश्यकता नहीं है, भगवान के लिए आप आवश्यकता पैदा करो। जैसे मालिक कभी नौकर की खुशामद करे, मालिक कहे कि देखो तुमको मेरे यही नौकरी करनी है, नौकर कहे कि नहीं करूंगा, क्या नहीं करनी है, अरे तेरी तनख्वाह बढ़ा दूं, मुझे तनख्वाह की जरूरत नहीं है, अच्छा तेरे और कुछ वस्तु दिला दूं, तेरे घर में कोई उत्सव है कोई खर्चा है तो खर्चा दे दूं, तू मेरे यही कि नहीं हमें तो नहीं करना है। तो वो नौकर की खुशामदी करता है। क्यों करता है? क्या उस मालिक को नौकर मिलते नहीं है? पर मालिक के मन में ये भावना रहती है कि ऐसा नौकर नहीं मिलेगा जिसके भरोसे पूरा मकान खुला छोड़ देता हूं, मेरे पैसे हीरे जवाहरात कहीं इसने चुराए नहीं है, खुला रहता हूं, विश्वास के साथ रहता हूं, असल में इसने विश्वास जीता है। ऐसे अपने लोगों को भगवान के अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए। हनुमान जी ने ऐसा ही भजन किया तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। जैसे कामी पुरुष को कामिनी अपने वश में कर लेती है, जो काम किंकर होता है उसको उसकी स्त्री अपने वश में करके रखती है। इसी प्रकार भगवान प्रेम के वश में हो जाते हैं। भगवान अपनी पोल खुद ही खोलते हैं और भागवत में कहते हैं अहम भक्त पराधीन है, मैं तो भक्त के अधीन रहता हूं। तो ये भगवान ने अपनी पोल खोल दी तो अपने को तो भगवान की इस पोल का लाभ लेना चाहिए। गीता में बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस प्रकार से बसता है मैं उसको उसी प्रकार से बसता हूं। इसलिए सबसे बढ़कर भगवान का भजन ध्यान है। सज्जनों, ये मनुष्य शरीर तो यूं ही चला जाएगा, बातों ही बातों में चला जाएगा। मौत आएगी तो वो कह करके नहीं आएगी कि मैं कल आऊंगी कि परसों आऊंगी या दो घंटे बाद आऊंगी, ऐसा कह करके नहीं आएगी, अचानक आ जाएगी। हमको पता ही नहीं चलेगा और मर जाएंगे, दूसरों को पता चलेगा कि हम मर गए, अपने को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जरूरी काम को छोड़ करके किस काम धंधे में लग गए हैं। हमको श्रद्धा प्रेम से भगवान का भजन करना चाहिए। हम भगवान को नहीं भूलेंगे तो फिर भगवान भी हमको नहीं भूलेंगे। हम भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दें तो भगवान हमको सर्वस्व अर्पण कर देंगे। ये भगवान को जीतने का सरल से सरल उपाय है। इस प्रकार से जो भक्ति करता है भगवान ऐसे भक्त के अधीन हो जाते हैं। रामायण में कितनी बढ़िया बात कही, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरुहरि संत समीरा। इसका अर्थ बहुत ही सरल है फिर भी बताते हैं। मेरे प्रभु, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि राम से बढ़कर राम का दास है और राम सिंधु घन सज्जन धीरा, राम समुद्र के समान है और उनके भक्त होते हैं वो बादल के समान है। क्या कि बादल है वो सागर से ही पैदा होते हैं, सागर से ही जल उठाते हैं और अधिकांश जल सागर से ही मिलता है बादलों को, परंतु किसान लोग हैं वो सागर नहीं चाहते हैं, वो बादल चाहते हैं। किसी का समुद्र के किनारे भी खेत होगा तो वो समुद्र का पानी नहीं लेगा, वो बादल का पानी लेना चाहेगा, क्योंकि वर्षा का जो जल होता है वो मीठा होता है, गुणकारी होता है, जमीन के लिए हितकारक होता है। सागर का पानी जमीन के लिए अच्छा, खेती के लिए अच्छा नहीं होता। इसी प्रकार उच्च कोटि के जो महात्मा लोग होते हैं वे भगवान के प्रेम प्रभाव और गुणों की वर्षा करते हैं तो सुनने वाले सब मुग्ध हो जाते हैं, जैसे किसान मुग्ध हो जाता है। तो समुद्र का जो अपार खारा जल है वे बादलों के मुख में आने से मीठा होता है। ऐसे ही भगवान तो निर्गुण निराकार सब जगह व्यापक है, दुष्ट में भी है, पापी में भी है, धर्मात्मा में भी है, लोह लकड़ में भी है, सब में है। परंतु ये बात जब तक समझ में नहीं आती है तब तक रहते हुए भी उनका ज्ञान नहीं होता। जैसे समुद्र के जल को बदल में नहीं ले लेते तब तक उसमें मिठास नहीं आती। भगवान के भक्त बड़ी सरलता से भगवान की बात बोलते हैं तो एक मिठास आता है। इसलिए भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्त हैं। चंदन वृक्ष के समान तो भगवान है और वायु के समान भगवान के भक्त हैं। चंदन के वृक्ष की गंध आती हो उसको वायु ही तो फैलाता है, नहीं तो चंदन का वृक्ष तो अपनी जगह पड़ा है कौन जाने, पर हवा चलती है तब चंदन की सुगंध आती है। सुगंध आने पर पता चलता है इधर चंदन का वृक्ष है। तो वे वृक्ष वायु को आशीर्वाद देते हैं कि हे वायु, तुमने हमारा खूब अच्छा प्रचार कर दिया। उन्हीं का गुण गाते हैं वायु का। ये जो ब्रज भूमि है, यहां गोपियां भगवान की भक्त थी और उन्हें जरासी छाछ के लिए नचा लिया करती थी तथा भगवान उनके वश में होकर नाचते थे, इसका कारण क्या था? इसका कारण तो केवल यही था कि गोपियों में प्रेम बहुत था। प्रेम के कारण राधिका जी के तो भगवान एकदम वश में थे। सारे संसार को आह्लादित करने वाले भगवान को आह्लादित करती थी राधिका जी। तो राधिका जी भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। देखो, सारी दुनिया को आनंद पहुंचाने वाले भगवान को आनंद देती है। भगवान उनके अधीन नहीं रहेंगे, वे जैसा नचाती है वैसा भगवान नाचते हैं। ऐसे हमारी सारी क्रिया भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो, हमारे हृदय का भाव भगवान के लिए पैदा हो, वाणी के शब्द भगवान के लिए हो, शरीर की क्रिया भगवान को मुग्ध करने के लिए हो, फिर हमें भगवान के दर्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान को आवश्यकता हो तो आओ, आओ भगवान हमारा दर्शन करें। कबीर जी से किसी ने कहा, इसमें नहीं आता, कबीर जी से किसी ने कहा कि महाराज, आपको भगवान के दर्शन हुए क्या? कि ये काम मेरे से मत पूछो, तो भगवान से पूछो कि आपने कभी कबीर के दर्शन किए कि नहीं किए। ये मेरे से क्यों पूछो? भगवान से पूछो कि आपने कभी कबीर के दर्शन किए कि नहीं किए। तो भगवान को आवश्यकता हो तो वे आकर दर्शन करें। ये बहुत उच्च कोटि का भाव है। भाव ही प्रधान है। श्रद्धा, प्रेम, शांति, निष्काम, शांतरस, माधुर्य, ये सब अपने अंदर पैदा होने वाला भाव ही तो है। जब मनुष्य भावावेश में आता है तो भगवान स्वयं आकर उसे चेत कराते हैं। जैसे सुतीक्ष्ण जी को भावावेश हो गया तो भगवान ने आकर उनको उठाया। उठो उठो द्विज मम प्राण सम, आप तो मेरे प्राणों के समान हो ब्राह्मण देवता, उठो मैं आ गया। परंतु वो ध्यान में प्रेम भाव में ऐसा मस्त हो गया, उसको पता ही नहीं चला कि भगवान आए हैं। तब फिर भगवान ने उसके हृदय में जो अपना रूप बसाया हुआ था उसको छिपा लिया, तो वो घबराया सुतीक्ष्ण, और आंख खोलकर देखा तो भगवान सामने खड़े, तो स्तुति करने लगा, तो वो प्रेम में मुग्ध हो गया था। तो भगवान वहां आए। सच पूछा जाए तो ऐसे भक्तों को तो भगवान खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। भगवान के यहां ऐसे मनुष्यों की बड़ी कमी रहती है। ऐसा भाव बढ़ाना चाहिए। पदार्थ भी भाव से संबंध रखते हैं। जितनी चीजें हैं, जब उनका भाव तेज होता है तब उनका अच्छा दाम मिलता है। हमारे पास मामूली सी चीज है, लेकिन उसका भाव तेज हो जाता है तो उस वस्तु के अंदर बड़ी विशेषता दिखती है। सोना क्या है? सोना एक खनिज पदार्थ ही तो है, पर उसका भाव तेज हो जाता है। सब खनिजों में सोने का भाव सबसे तेज होता है, इसलिए सोना हमारे हृदय में छा जाता है। तो भाव से वो वस्तु अच्छी लगती है, तो हमारा हृदय का भाव जितना बनेगा वो कीमत में अच्छापन दिखेगा। ऐसे भगवान में हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए। हमारा भाव उच्च कोटि का हो तो हमें प्रेम का संग्रह करना चाहिए, बटोरना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। सारी दुनिया के प्रेम को कौन इकट्ठा कर सकता है? वही कर सकता है जो भगवान का अनन्य भक्त होगा। वो भगवान के अलावा किसी को भी महत्व नहीं देगा। वो देखेगा कि भगवान के सामने सब महत्वहीन है। जैसे सोना देखने वाला व्यक्ति सब धातुओं को सोने से नीचा समझता है, ऐसे वो भगवान के सामने दूसरे को कुछ भी नहीं समझता है। भगवान को सबको भगवान समझने वाला, सबके हित में जो रत होता है, सबके लिए जो अपने आप को समर्पण कर देता है, वह सबको जीत लेता है, सबको खरीद लेता है। समदर्शी मोई कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। हनुमान जी देखो, मुझे समदर्शी कहते हैं, परंतु मैं अपने को समदर्शी कहता नहीं हूं, क्योंकि मुझे सब में अनन्य सेवक, अनन्य भक्त बहुत प्रिय है। इसलिए मैं थोड़ी कह सकता हूं कि मैं सबके साथ सम हूं। सम होते हुए भी मुझ में एक विशेष बात है। अनन्य भक्त के लक्षण ये है, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे अनन्य भक्त की बुद्धि इस सिद्धांत से कभी नहीं टलती, नहीं हटती कि चराचर भगवान का स्वरूप ही है। ये मेरे भक्त से बात कभी हटती नहीं है, वो मेरा अनन्य भक्त है। यदि कभी तो ये भाव बनता है भगवान का, कभी नहीं बनता है। कभी हम संसार को ठीक मानते हैं, कभी भगवान को ठीक मानते हैं, ऐसे दोनों तरफ लुढ़कते रहते हैं, तो ये अनन्य भक्ति नहीं है। ऐसा सच्चा सेवक बने कि सबको साक्षात नारायण समझ करके, सबको भगवान समझ करके सबकी सेवा करे, भगवान की बात व्यवहार में लाए, जो सबके लिए अपने आप को समर्पण कर दे, वह भगवान का अनन्य भक्त है। और सबको जीतने का उपाय हम बताते हैं। सबको जीतने का उपाय है निष्काम भाव, किसी से कोई इच्छा न हो। भगवत भाव से सबकी सेवा करने वाला सबको खरीद लेता है, जीत लेता है, अपने प्रेम से सबको आकृष्ट कर लेता है, उसको सब चाहने लगते हैं, सब उसके प्रेम के अधीन हो जाते हैं, ऐसे प्रेमी के अधीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं भक्त के अधीन हूं। उन्हीं के लिए कहा जा सकता है कि वे भगवान से भी बढ़कर हैं। जब भगवान कहे ना कि मैं भक्त के अधीन हूं, तो उसी के लिए कहा जाता है कि भगवान से भी वे बढ़कर हैं। तो ऐसा ही हम लोगों को बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये प्रेम भाव की बात कही है, ये तो भगवान के प्रेम के विषय की प्राप्ति की तात्विक बात, गहरी बात आपको बताई है। ये बहुत रहस्य की बात है। और भी कई बातें हैं, रहस्य की बातें हैं, प्राय छिपी रहती हैं, पता नहीं है। और रहस्य की बात है कि प्रेमी के अधीन भगवान हो जाते हैं। प्रेमी बड़े उच्च कोटि के महात्मा पुरुष होते हैं, ये ठीक है, किंतु संसार में जो गए बीते हैं, ऐसे पुरुषों के लिए कोई चारा है क्या? भगवान के पास एकदम गए बीते हैं, कुछ है ही नहीं क्या? है, उनके लिए भी चारा है। तो भगवान बोलते हैं, अन्ये त्वेव मजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते भी चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणा। जो मूर्ख है, अज्ञानी है, कुछ नहीं जानते हैं, वे भी जानने वाले पुरुष महात्माओं के पास जावे, सुने और सुनकर के उसको धारण करें। केवल सुने नहीं, धारण करें, तो वे मृत्यु सागर से पार हो जाते हैं। वे भी उन बातों को सुने और साधन करें। प्रश्न होता है कि कोई ऐसा उपाय है कि जो दीन हो, दुखी हो, अनाथ हो, असमर्थ हो, किसी लायक ही न हो, और जो पापी हो उसके लिए भी कोई उपाय है कि हाँ है क्या? अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाव से भजन करने वाला हो तो वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। फिर वही बात आपने कह दी कि कैसा भी पापी हो, कैसा भी नीच हो, वह भी भगवान का अनन्य भक्त बन जाए। प्रथम तो ऐसा पापी अनन्य भक्त बन नहीं सकता, यदि बन जाए तो ये बात हो सकती है, किंतु और कोई सरल उपाय है तो भगवान और सरलता पर आ जाते हैं। सुरिदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा, मुझको सबका सुरिद मान लो तो शांति मिल जाएगी। सुरिद क्या? कि भगवान ऐसे बिना कारण प्रेम करने वाले हैं, दया करने वाले हैं। देखो मैंने उम्र भर भगवान से कभी प्रेम नहीं किया, दया नहीं, भगवान ने दया नहीं छोड़ी, भजन नहीं किया, श्रद्धा भी नहीं की, तब भी भगवान ने मुझे रोटी दी, भगवान ने मुझे जल दिया, भगवान ने मुझे पाला पोसा पाल रहे, कितना भगवान मेरा साथ दे रहे। ऐसे भगवान से मैं प्रेम न करके कहां चला गया, भटक गया। इस प्रकार से जो भगवान को सुरिद मान करके भटके हुए रास्ते से वापिस आ जाते हैं उनको बड़ी शांति मिलती है। मैं भगवान से प्रेम करूं और वो मुझसे प्रेम करें, ये तो एक न्याय की बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि मैंने भगवान से कभी प्रेम नहीं किया और उन भगवान ने मेरे पर कभी दया करनी नहीं छोड़ी, कितनी दया की है। ऐसे भगवान को सुरित समझते हैं, वो बहुत जल्दी अपना कल्याण कर लेते हैं, उनका भटकाव मिट जाता है। ये आपको बड़ी रहस्य की बात बताई है। जितने मेरे भक्त हैं सभी उदार हैं, ज्ञानी हैं, साक्षात मेरी आत्मा है। सब उदार इसलिए है कि उन्होंने मेरा भजन चालू कर दिया। ये देखो भगवान की कैसी विशेषता है कि भगवान ने मांगने वाले को भी उदार कहा। उदार आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, चार भगत हैं भगवान ने कहा, ये चारों ही उदार हैं। आर्त माने जो दुखी है, जो भगवान से कुछ चाहता है, दुख दूर हो जाए, भगवान कहते तू उदार है। अब वो उदार है कि भगवान उदार है? भगवान से दुख दूर कराना चाहता है, भगवान उसको कहते हैं तू उदार है। भगवान से अर्थ चाहता है, पदार्थ चाहता है, धन चाहता है, भगवान कहते हैं तू उदार है। तो इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य यह है कि उसने मुझे इस विश्वास के लायक समझा कि मेरा दुख दूर भगवान करेंगे, मुझे धन आदि की प्राप्ति भगवान कराएंगे, ऐसा समझ के उसने जो मुझे विश्वास दिया है इस कारण से वो उदार है। मैं तो उसको धन दूंगा या उसकी पीड़ा हर लूंगा, लेकिन उसने मेरे पर विश्वास किया है, उस विश्वास की दृष्टि से भगवान कहते हैं कि उदार है। वे सर्वस्व मेरे अर्पण कर दें, मैं उनको सर्वस्व अर्पण कर दूं, माने जो ऐसा करते हैं वो बड़े श्रेष्ठ हैं, उनके पास जो कुछ पूंजी है वो मुझे अर्पण कर दे, तो सबसे बड़ी पूंजी तो विश्वास की रही। तो उसने मुझे विश्वास दे दिया, उसकी उदारता में क्या कमी है? इसलिए भगवान कहते हैं कि वे उदार हैं। तो भगवान को हम सुरिद समझ लें तो बेड़ा पार है। सुरिद है, भजने की जरूरत नहीं, ध्यान करने की जरूरत नहीं, किंतु ये बात समझ लें कि भगवान सबके सुरिद है, उन सब में हम भी हैं। अरे हमारा भी सबके अंदर तो नाम आता ही है ना, तो भगवान प्रेमी है, हमारे सुरिद है, बिना कारण कृपा करने वाले हैं। चाहे हम भगवान का भजन नहीं भी करते हो चाहे हम भगवान को याद भी न करते हो, लेकिन भाई भगवान तो सर्वभूतानाम है ना, सुरिदम सर्वभूतानाम, तो भाई भगवान के तो दया में हम आ गए। इसलिए भगवान कितने हमारे सुरिद हैं। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया तो कितनी भगवान के अंदर दया थी। 84 लाख योनियों में भटकते रहते थे, काल कर्म स्वभाव से घिरे हुए थे। हमारी दशा को देखकर बिना कारण भगवान ने हम लोगों को ये मानव शरीर दिया। सज्जनों, ये मानव शरीर अब भगवान के यहाँ बड़ा मूल्यवान है। इससे ऊंचा और कोई शरीर मिलने वाला नहीं। ये कोई हमको पुण्य के बल पर नहीं दिया है, केवल दया के कारण से दिया है, और ये केवल कल्याण करने के लिए दिया है, और कुछ भी काम करने के लिए नहीं दिया। यदि कहो कि ऐसा तो हम लोग समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु वास्तव में भगवान ऐसे ही है, तुम समझते नहीं। यदि कहो कि आपको क्या पता, मैं समझता हूं, तो यदि भगवान को आप सुरिद समझते तो आप भी सुरिद हो जाते, माने आप भगवान के साथ सुरिद पड़े का काम करते। यदि भगवान को समझ जाते तो भगवान तो बिना कारण दया प्रेम करने वाले हैं। इस रहस्य तत्व को यदि समझते तो तुम लोग भी वैसे ही भगवान से बिना चाहे प्रेम करते। कम से कम यह तो होता कि तुम लोगों के मन में प्रेम, आनंद, शांति, दया का समुद्र तो उमड़ता। आप ये समझते हैं कि भगवान की हमारे पर इतनी दया है, हम गए बीते तुच्छ जीवों पर भगवान की देखो इतनी दया है, इतना भारी प्रेम है, तो उसे समझने के साथ ही समझो कि पागल से हो जाते हैं हम, इस प्रेम में पागल हो जाते हैं। अभी तक हमने समझा नहीं है कि दया है, अभी केवल बोलते हैं। कोई आदमी जो बिल्कुल छोटा है और किसी प्रकार से 1 रुपए की लाटरी डाल दी और उस लाटरी से 2-4 करोड़ रुपए आ गए, तो उसको कितना हर्ष होता है। अरे उसकी औकात तो 1000 रुपए की भी नहीं है और उसको मिल गए करोड़ों रुपए, तो वो पागल हो जाता है कि नहीं? ऐसी क्या भगवान की बात सुनकर के हम पागल होते हैं? नहीं होते। इसका मतलब हमने उनको महत्व दिया ही नहीं है। हम एक तुच्छ आदमी है और समझ लें कि भगवान की, अरे भगवान की हमारे पर इतनी दया है, इतना प्रेम है, तो फिर हमें होश ही नहीं रहेगा, इस बेहोशी में ही हम डूब सकते हैं। एक प्रकार से तो हमारी दशा बेदशा हो सकती है। ये हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर समझते कहाँ हैं? भगवान की दया है सुनते हैं, भगवान की दया है पढ़ते हैं, और केवल ऊपर ऊपर से हाँ साहब बड़ी दया है, पर समझते कहाँ हैं? दुनिया में है कोई? हिंदुस्तान में यदि यहाँ के बादशाह की जिसके ऊपर दया हो जाए तो वह फूला नहीं समाता। तो समस्त ब्रह्मांड के मालिक की बिना कारण हमारे प्रति प्रेम और दया हो और इसका ज्ञान हमें हो जाए, तो फिर हमारी क्या दशा हो सकती है? उसको हम संभाल नहीं सकते हैं। देखो भाई, बात इतनी गंभीर है, ऐसी बातें मिलती नहीं। कितना बढ़िया उदाहरण दिया है। फिर दोबारा कहते हैं कि हमने भगवान की दया को, कृपा को समझा कहा है? यदि हिंदुस्तान के बादशाह की जिसके ऊपर अकारण दया हो तो वो फूला नहीं समाता। समस्त ब्रह्मांड के मालिक की बिना कारण हमारे प्रति प्रेम और दया है, इसका ज्ञान हमें हो जाए तो हमारी क्या दशा हो? हम उसको संभाल नहीं सकते हैं। इसका भाव यह है कि भगवान पात्र पर तो दया करते हैं, अपात्र पर भी दया करते हैं। लड़का कितना भी कुपात्र हो जाए, माता पिता की तो उस पर सदा दया रहती है। दया न रहे तो लड़का जी कैसे सकता है? यदि 3-4 साल का लड़का माता को मारता है, पिता की मूंछ उखाड़ता है, चंचलता करता है, तो माता पिता की उस बच्चे पर से दया दूर होती है क्या? बल्कि खुश होते हैं। भगवान की दया कभी दूर हो सकती है क्या? इस बात को हम लोग समझते नहीं हैं, इसलिए इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है, हमको भगवान की दया को देख समझ करके क्षण क्षण में मुक्त होना चाहिए। लड़का गंदगी से भरा हुआ है और वो माता के लिए रोता है और चिल्लाता है, तो माता उस समय में उस बच्चे को यह कह करके ठुकराती है क्या कि यह तो मलमूत्र में पड़ा है, मैं तो इसके हाथ नहीं लगाती? नहीं, माता सब काम छोड़ के आती है और गंदगी में सने में उस बच्चे को उठाती है और उसको साफ करती है। इसके बदले में अपना और लड़के का सब कपड़ा साफ करती है, स्नान करती है, स्वयं भी स्नान करती है, उसको भी स्नान कराती है। इस प्रकार जो भगवान के लिए व्याकुल हो जाता है, भगवान से उसके बिना व्याकुल हुए बिना रहा ही नहीं जा सकता। इसमें तो कहना ही क्या है, किंतु भगवान के तत्व रहस्य को जो समझ जाता है उसके लिए भगवान कहते हैं उसको परम शांति मिलती है। हम कितने ही कुपात्र क्यों न हो, किंतु भगवान की दया के रहस्य को समझ लेने पर प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगती है कि अरे जिस कृपा के योग्य हम नहीं थे, फिर भी भगवान ने हमारे पर कितनी भारी कृपा की है। अपना सर्वस्व अर्पण कर दे, कौन सी ऐसी बात है जो अपना कुछ भी भगवान को समर्पण नहीं करते कर सकते? क्या ऐसी हमारे पास है कि जो हम भगवान को अर्पण कर नहीं सकते, हम कहीं कमजोर पड़ते हो? भगवान के यहाँ ऐसे पुरुषों के लिए जगह तो है ही, परंतु भगवान की दया पर विचार करो कि जो महान नीच हैं, पापी हैं, उद्दंड हैं, उनके लिए भी भगवान के यहाँ पूरी गुंजाइश है। और भगवान के यहाँ भी नहीं तो फिर कहाँ जाएगा, उसको कौन संभालेगा? ये बात समझ लें, ये बात उसकी बुद्धि में आ जाए कि भगवान की दया का सागर उसके ऊपर से उछलता जा रहा है और मैं उस दया के सागर में डूबा हुआ हूं। ऐसा दया को देख देख करके मुग्ध हो जाए। देखो फिर भगवान की कैसी दया का ज्ञान होता है, कितनी भारी दया है। भगवान एक प्रकार से तो कैसे दयालु है, कैसे प्रेमी है, तो इस बात का भाव रखने वाला पुरुष भी भगवान से अलौकिक लाभ ले लेगा। हम लोग जब अपनी ओर ख्याल करके देखें तो पापों की कोई सीमा नहीं है। हम लोगों ने कितने जन्मों से कैसे कैसे पाप किए उसकी कोई सीमा नहीं है, तब भी हमारे लिए भगवान के यहाँ वो पद तैयार है। आप याद करो सूरदास जी का ये पद, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। हमारे समान संसार में कुटिल अर्थात नीच और कामी इस दुनिया में कौन होगा, जिन भगवान ने ये शरीर इसी काम के लिए दिया और उसी को ही हमने सबसे पहले भुलाया, कितने हम कृतज्ञ हैं। फिर भी वे भगवान हमारे पर दया की दृष्टि से देखते हैं। अनंत जन्मों के किए पापों को, इस जन्म के पापों को समझते थे कि देखो हमारी कैसी हीन दशा है, इस हीन दशा को मानने के प्रभाव से हमारा उद्धार हो जाता है। हम इतना भी मान लेवे ना कि हम कितने नीच हैं, उससे भी बड़ा उद्धार हो जाता है। जो आदमी मुंह से नहीं कहता, स्वयं को सबसे हीन मानता है, परमात्मा का ज्ञान होने पर सारे पापों से मुक्त होकर वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवे नैव द्विजिनं संतरिष्यसि। तू पापी नहीं है, किंतु दुनिया में जितने पापी उन सब पापियों से अधिक पापी भी हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से हे अर्जुन तुम तर जाओगे। इतनी भगवान की दया है। राम।